ओम शांति। आज का सारा दिन मीठी मीठी मम्मा की बहुत सारी बातें, उनकी विशेषताएं सभी ने सुनी और उसी विशेषताओं से संबंधित आज का विषय है। क्योंकि सबसे पहले इस यज्ञ के अंदर मम्मा ने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया जो नंबर वन संपन्न और संपूर्ण बन गए। क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ था, कौन सी उनको निरंतर स्मृति थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए अंतिम घड़ी है तो संकल्प, श्वास, समय, जो शक्तियां हैं वो सब सफल होनी चाहिए। तो मातेश्वरी जी ने अपनी पूरी ही जीवन में एक ही लक्ष्य रखा, एक बाबा दूसरा न कोई है। बाबा के सिवाय किसी में भी आंख न जाए और सदा इसी स्मृति में रही, श्वासों श्वास बाबा ही दिल में बसा रहे। किसी भी घड़ी ये श्वास निकल जाए तो बाबा की याद में निकले। हमारी चक्रधारी बहन आज सुना रही थी मम्मा की पूरी जीवनी, लास्ट समय भी बाबा के साथ सेवा करते करते, सब बच्चों से मिलन मनाते, अंगूर खिलाते और सबसे विदाई ली। बाबा ही दिल में मन में सदा बसा रहा। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे वर्तमान समय समय की हर बात के विषय में बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, सभी जानते हैं, सबके पास सब प्रकार के समाचार हैं। कलयुगी दुनिया जहां पर हर क्षेत्र में अति हो रही है, एक ओर विकारों का फुल फोर्स और दूसरी ओर प्रकृति का तांडव नृत्य। अचानक क्या क्या हो रहा है किसी को भी कल की आस रख करके चलने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब ये स्मृति में रहता है कि काल तो किसी घड़ी भी आ सकता है और किसी का भी आ सकता है, पूछ करके नहीं आएगा, इसलिए उसके पहले जो श्वास है, जो संकल्प है, जो शक्तियां हैं वो सब सफल हों। मम्मा की एक और विशेषता शायद आपको बहनों ने सुनाई हो, उनका जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ था, एक बार अगर कोई बात गलत हो गई, रियलाइज हुई, पता चला कि गलती है, ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है, तो उस बात को उन्होंने कभी दोबारा रिपीट नहीं किया। श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं कभी भी कोई भी गलती को दो बार रिपीट नहीं करती। मान लो एक बार हो गई कोई कारण से, अधीनता से, परवश स्थिति से, वायुमंडल के प्रभाव से, तो दोबारा वो गलती न हो इतनी अंदर से शक्ति हो, इतनी अंदर से दृढ़ता हो। और मम्मा ने इसी एक संकल्प के साथ श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया उनका अध्ययन, उनकी लगन, उनकी अनेक विशेषताएं हमारी दादियों के द्वारा मम्मा के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसलिए आज हम सब समय को सामने देखें। पहले तो समय कौन सा है, किस बात की समीपता दिखाई दे रही है। आप सब जानते हैं कि इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, पर्यावरण के अंदर इतना प्रदूषण फैल रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से भी विज्ञान वैज्ञानिक चिंतित हैं कि अब ये दुनिया अधिक समय चलने वाली नहीं है। सब जानते हैं कि कुछ समय के बाद इस धरती से पीने का पानी ही खत्म हो जाएगा। इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, शायद आपने एक न्यूज सुनी होगी इसी साल की, एक शहर के अंदर पारा 62 हो गया और इतनी अधिक गर्मी हुई जो पूरे झाड़ के झाड़ जलते हुए दिखाई थे, गर्मी से जलने लगे, कोई ने आग नहीं लगाई, हरे हरे झाड़ भी जल गए। जब इस प्रकार से धरती के तापमान बढ़ रहा है, पांचों तत्व तो अपना कुछ न कुछ विकराल रूप दिखा रहे हैं और माया के पांचों विकारों का चारों तरफ से फुल फोर्स है, छोटे छोटे बच्चों पर भी बलात्कार से हिंसाएं हैं, अत्यधिक प्रकार से धरती तमोप्रधान होती जा रही है, मनुष्यात्माओं की वृत्तियां दूषित होती जा रही हैं, और कोई भी क्षेत्र में जब अति होती है तो उसका अंत निश्चित है। और हम सब जानते हैं कि हर क्षेत्र अति की ओर जा रहा है, पाप अति में जा रहे हैं, बीमारियां अति में जा रही हैं, लोगों के हिसाब किताब जो रहे हुए हैं वो अचानक अति में निकलते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन सी बीमारी कब किसको अटैक करेगी और कौन किस समय इस शरीर से मुक्त हो जाएगा। हम सब बाबा के बच्चे, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, समझदार हैं, मैं समझता हूं इसका अधिक विस्तार मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने तो ये हम सबको पाठ पढ़ाया है कि बच्चे अचानक सब कुछ होगा, बता के नहीं होगा, और जिस दिन ये बुद्धि से सबके निकल जाएगा कि अभी तो कुछ नहीं होगा, उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि ये अंतिम घड़ियां हैं कलयुग की, सब प्रकार की तैयारियां हैं, सिर्फ देरी है तो हम सब संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करें। ये हमारा भाग्य है जो हमें पुरुषार्थ के लिए कुछ समय अभी भी मिला हुआ है। बाबा कहते थे बच्चे वो समय आएगा जो अपने लिए फुर्सत ही नहीं होगी, जब भक्तों की भीड़ लगेगी, प्रजा की भीड़ लगेगी, लाखों की अंदाज में लोग भागेंगे, पता चलेगा इस धरती पर हमारा गति सदगति दाता भगवान आ गया है, तो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप योग नहीं कर पाएंगे, अभी तो आप योग भट्टी कर रहे हैं। इसलिए हम सबको कुछ अपने लिए प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अब बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें और बेपरवाही की भूलें, करने का समय नहीं है। कई बाबा के बच्चे बचपना दिखाते हैं, बचपना कहते हैं नाज नखरे, छोटे बच्चे होते हैं ना उनके नाज नखरे चलते हैं, कहते अरे अभी बड़े हो गए हो, ये नाज नखरे छोड़ दो, अभी आप छोटे तो नहीं हो, शरीर की आयु तो बड़ी है लेकिन ज्ञान की आयु भी कईयों की ज्यादा बड़ी है, 5 साल 10 साल हो गए हैं, कोई होंगे जो शायद एक साल छह महीने के हों, जो छह महीने एक साल वाले हाथ उठाओ, हैं। अच्छा, इनकी आयु छोटी है, फिर भी बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट जा सकते हो, समय है, मार्जिन है। इसलिए हम सबको ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है जो किसी भी प्रकार की अब भूले न हो, बेपरवाह नहीं बनना है। किसमें? ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में। जो बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम और मर्यादाएं बनाई हैं, कई बाबा के बच्चे दूसरों को देखकर खुद अलबेले हो जाते हैं, इनके अंदर भी ये कमी है, ये भी ऐसे करते हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतनी अच्छी क्लास कराते हैं, इतना अच्छा योग सिखाते हैं, फिर भी अगर बाबा कहते हैं दूसरों को देख लिया और दूसरों के अवगुणों को अपने पास नोट कर लिया, तो हो सकता है वो आत्मा जिसके अंदर कमी कमजोरी है वो अपनी उन कमियों को निकालने की मेहनत करता हो, पुरुषार्थ करता हो, और वो आगे चल करके उस कमी को समाप्त करके विजयी बन जाए। लेकिन अगर आपकी नजर उनकी कमी कमजोरी पर जा रही है और उसको आप देख रहे हैं, तो वो आपके अंदर भरती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप कमियों का भंडार बन जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, बाबा ने हम सबको विशेषता देखने का चश्मा दिया है। अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ सुनते जाना, मैं कई बातें आपको सुनाऊंगा। संगठन के बीच में रहते हुए, चाहे छोटे हैं, नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, सबकी विशेषताएं हैं। मैं समझता हूं बाबा ने एक मुरली चलाई थी, शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो, पढ़ी हो। बच्चे, अगर मेरे बच्चों में 36 गुण ऐसे गाए हुए हैं और 36 में से 35 अवगुण हो, एक भी विशेषता हो, एक भी गुण हो, तो मैं उन बच्चों की उस एक विशेषता को देखता हूं और उसको ही सेवा में लगाता हूं। अगर वो बीज विशेषता का इस सेवा में वो लगा देता है, तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है। आप सब इस बात को ध्यान देना, अधिक अपनी कमी और कमजोरियों पर विचार नहीं करो, सोचो नहीं। कई जब पर्सनल मिलते हैं तो अपनी बातें, अपनी कमी कमजोरी, अपनी निराशा की बहुत सारी बातें सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत युद्ध होती है। बाबा कहता है बच्चे, इसकी ज्यादा परवाह नहीं करो। आप सब समर्थ आत्माएं हो, सर्वशक्तिमान पिता आपका साथी है। अगर कोई छोटी मोटी कमी कमजोरी है, समाप्त हो जाएगी। मन को बिजी रखना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक जो हो रहा है वो मन के ऊपर होता है। मन अगर किसी का अच्छा है, सकारात्मक है, बहुत अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, तो कर्म इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। अधिकतर हम सब ने अपने मन पर नियंत्रण रखना छोड़ दिया है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं अपने मन के ऊपर बहुत पहरा देती है। इसको गलत मार्ग पर ले जाने के जो साधन बने हैं इस समय साइंस के, उन साधनों पर विशेष ध्यान देना, नहीं तो मन कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर कोई भी अश्लील चित्र देखते हैं इंटरनेट में, टीवी माध्यम में या मोबाइल में, कहीं भी, तो वो जो पिक्चर्स चलते हैं, देखे जाते हैं, उन पर ध्यान जाता है, उसके पर चिंतन चलता है और हमारे विचार, हमारा मन तूफानी घोड़ा बन जाता है। फिर कहो हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, तो बाबा कहता है तुम योगी नहीं रहोगे, योद्धे बन जाओगे, युद्ध में ही समय चला जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के योगी बच्चे हैं, युद्ध में समय न जाए। इसलिए मन को सशक्त बनाने के लिए, एक तो अच्छा संग करो, अच्छा अध्ययन करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे अच्छे विचारों की उत्पत्ति करो। और अच्छे विचारों वाला मन जिसके अंदर हर आत्मा की विशेषताएं नोट हैं, केवल विशेषताएं दिखाई देती हैं, और विशेषताओं पर ध्यान जिस आत्मा ने दिया वो अपने आप विशेष बन जाएगा, कमियां उसकी समाप्त हो जाएंगी। आप सभी कभी सोचते हैं कि मेरे अंदर कितनी विशेषताएं हैं या नहीं है? जो समझता हूं मेरे अंदर कोई नहीं वो हाथ उठा दो, ऐसा नहीं है ना कोई, हर आत्मा विशेष है, नहीं तो भगवान की नजर ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, जो इतने बड़े विश्व में से, इतने बड़े भारत खंड से हम इतने छोटे से ग्रुप को निकाला है, कितनी बड़ी भाग्यवान आत्माएं हैं जो उस भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी। कहां छिपे हुए थे? मैं तो कभी कभी सोचता हूं मैं कहां इस कोने में गांव में पड़ा हुआ था, अभी भी साधन नहीं है वहां जाने के, बिजली के साधन भी नहीं है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव से, कोने कोने से परमात्मा ने निकाला, ढूंढा, जरूर कोई विशेषता देखी होगी ना, कोई विशेषता नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। हर एक आत्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, अगर हिम्मत है, निश्चय है, दृढ़ता है, सेवा भावना है, शुभ भावना है, स्वचिंतन करने की कला आती है, क्या ये विशेषता अपनी इस बाबा के यज्ञ में, बाबा के कार्य में, सेवाओं में लगा नहीं सकते? लगा दो, जो विशेषता है लगाओ। एक विशेषता भी अगर आपने लगा दी, मान लो आपके पास तन की शक्ति है, सेवा करने की भावना है, और आप बाबा के घर में जाकर के सिर्फ कहते हो दीदी मैं सिर्फ सेवा केंद्र पर आके सवेरे सवेरे झाड़ू लगा देता हूं, सफाई कर देता हूं, कोई भी विशेषता है, और आपने जाकर के रोज सफाई कर दी और जितनी आत्माएं आई देखा इतना अच्छा सेवा केंद्र, इतना अच्छा वातावरण, अगरबत्ती जल रही है, साफ है, स्वच्छ है, तो उन सबकी जो दिल की दुआएं मिलेंगी, जो उनका योग लगेगा, अच्छा लगेगा, वो किसको मिलेंगे? जिसने अपनी उस विशेषता को वहां लगाया है। हम ये न समझें ये काम हमारा थोड़ी है, ये तो यहां वाले कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कई बार हम दूसरों पर छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखो श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही नहीं है सिर्फ योग करना है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं जो सेवा की चांस मिलती हैं, जो चांस मिले, तन किसे करने का चांस मिलता है तन से करो, अगर तन से सेवा करने का चांस नहीं मिलता है और आप बहुत व्यस्त रहते हैं अपने लौकिक कार्य में, जॉब में, तो आपके पास मन की शक्ति है, कुछ समय बैठ करके बाबा की याद में शुभ भावना का वायुमंडल बनाओ, शुभ शक्तियों का दान दो, अगर अच्छा मनन चिंतन है, अच्छा लेखन है, तो अच्छे अच्छे लेख लिख दो, कोई सामने आता है उसको अच्छे ज्ञान की बातें सुना दो, वाणी से ज्ञान दान कर दो, कोई के उमंग उत्साह को बढ़ा दो, कोई की विशेषता है उस विशेषता को सेवा में सफल करा दो। अगर किसी भी एक विशेषता को आपने कार्य में लगाया तो आपके पास वो सब विशेषताएं अपने आप आ और दूसरी सब विशेषताएं आ जाती। हम लोगों का यही अनुभव रहा है, कोई विशेषताएं लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन कोई भी विशेषता जो थी वो बाबा के यज्ञ में लगाई, दादियों ने कहा ये करोगे, हमने कहा हाँ जी, कभी नहीं कहा मुझे नहीं आता, हाँ जी किया और काम करने लगे, दुआएं मिल गई, सहयोग मिल गया और सीख गए, उसके बाद एक के बाद एक सेवा मिलती गई और सेवा करते करते आज बाबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? हर आत्मा अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास जो सकती है उसको सफल करे, उसको व्यर्थ नहीं जाने दो, और मन का टाइम टेबल बनाओ, चार बातों में इसको बिजी करो। एक बाबा कहता है मिलन में बिजी करो, मिलन, बाबा से आंख खुलते ही मिलन शुरू हो जाए। जैसे मिलन होता है, दो लोग आपस में मिलते हो तो क्या करते हो, हेलो हाय के साथ साथ कैसे हो, क्या चल रहा है, एक दूसरे की बातों में जाते पूछते हैं, समाचार पूछते हैं, कुछ आपस में रूह रिहान करते हैं, ऐसे ही बाबा के साथ सवेरे से मिलन शुरू हो जाए, और मिलन की जो अनुभव हो क्योंकि भगवान से मिलन होता कोई सहज बात साधारण बात नहीं है। मिलन की विधि तो सब जान गए हो, जानते हो सब मिलन की विधि क्या है, क्योंकि वो है निराकार, वो है ज्योति बिंदु, वो देह से न्यारा है। तो उससे मिलन के लिए आपको भी इस देह से न्यारा होना पड़ेगा, समान बनना पड़ेगा। समान मिलन ही मौज का अनुभव कराता है। कोई बड़ा हो वो व्यक्ति छोटा हो, कोई साहूकार हो वो गरीब हो, बेचारा उसके आगे हिम्मत ही नहीं रखेगा बात करने की। बाबा के समान स्वरूप में स्थित होकर के, अगर बाबा ज्ञान का सागर है तो अपने बच्चों को मास्टर बनाया है, अगर सर्वशक्तिमान है तो अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो मिलन के समय वो समान स्थिति में बैठ करके रूहान करो, बाबा आपने मुझे आप समान बनाया है, अपने समान बनाया है। तो मन अगर मिलन में बिजी रहेगा, रूह रिहान करेगा, तो व्यर्थ से अपने आप मुक्त हो जाएगा। तो ये एक मिलन चाहिए। और दूसरा वर्णन जरूर करना, वैसे भक्ति में मना करते हैं किसी को सुनाना नहीं, लेकिन यहां तो बाबा ने खुली छुट्टी दी है। जो अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं वो दूसरों से शेयर करो, बताओ, वर्णन करो, उससे आपका खजाना बढ़ेगा। कहते धन दिए धन ना खुटे, शायद स्थूल धन खुट सकता है, लेकिन ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन जो हम सबके पास है, उसका वर्णन करें, उसको दूसरों को बांटें, ताकि दूसरे भी प्रेरणा लें, दूसरे भी सीख जाएं। तो पहला मिलन, दूसरा वर्णन, और तीसरा बाबा कहता है लगन को बढ़ाओ। अभी तक भी कई कुमारों के आगे बंधन है कि नहीं है? कोई को माँ बाप का बंधन है, कोई को नौकरी टोकरी का बंधन है, कोई को कोई बांध रहा है, कोई को कोई बांध रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? मन का बंधन। जो मन के बंधन से मुक्त है उसके कोई बंधन बांध ही नहीं सकता है, कितने भी बड़ी बातें आ जाएं। कई कुमार कहते हैं मैं अकेला हूं, मेरे परिवार वाले ये कहते हैं, ये कहते हैं, शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी कंप्लेन आती है। लेकिन बाबा से अगर कोई पूछता है तो बाबा कहता भले बच्चे कर लो, मना थोड़ी करेगा। अगर आपके पास शक्ति है, दृढ़ता की, हिम्मत की, तो बाबा मदद के लिए तो बंधा हुआ है। आप ही कमजोर संकल्प करके चल रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ये होगा वो होगा, तो बाबा कहता है जो ऐसे ऐसे संकल्प कमजोर करते हैं उनको माया खा जाती है। प्रतिज्ञा करो प्रयत्न नहीं, कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, समझाएंगे, मतलब गेंगे गेंगे नहीं करो, वो तो बकरियां करती हैं, मैं और गेंगे। आप सभी तो महावीर हो, महावीर के आगे कोई परिस्थिति ठहर सकती है क्या? कुछ भी हो जाए कोई भी हिला नहीं सकता, जमा दो पांव को अंगद की तरह। जिसका साथी स्वयं भगवान है उसका कौन बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अपने कमजोर संकल्प होते हैं, क्या कैसे, प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहते। जब अकेले मिलेंगे वही प्रश्न पूछेंगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और बाबा फिर मुस्कुरा करके कहता है बच्चे को अगर मैं कह दूंगा ये नहीं करना, तो कर लिया तो डबल पाप चढ़ जाएगा, इसलिए बाबा तो कभी नहीं कहेगा नहीं करना। ध्यान रखना, आप सब बहुत अच्छी तरह से हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, लगन को बढ़ाओ। जहां लगन है वहां विघ्न ठहरते नहीं, कितने भी विघ्न हो कोई भी विघ्न नहीं रहता। लगन माना जिगरी प्यार बाबा से, बाबा से प्यार, बाबा की पढ़ाई से प्यार, बाबा की सेवाओं से प्यार। और जहां बाबा बाबा है अंदर, वहां कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कभी नहीं कहो ये बंधन है, नौकरी में जाना पड़ता है, मुझे अमृत वेले नहीं उठने का समय मिलता, पढ़ाई का समय नहीं मिलता, मुरली सुनने का समय नहीं मिलता, मैं क्या करूं। जहां पर चाह है वहां राह निकल आती है। अगर संकल्प में दृढ़ता है मुझे करना ही है, सब प्रकार का सहयोग मिल जाता है, मददगार तैयार हो जाते हैं। तो आप बहुत हिम्मत रख करके संकल्प करके जाओ, प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा के लिए क्या कहावत है मालूम है? प्रतिज्ञा के लिए गायन है प्राण जाए पर वचन न जाए, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। धरत पड़िए, गिर जाओ मर जाओ, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना। हमारा धर्म क्या है? हम सबका धर्म है पवित्रता। पवित्रता को हम सब ने दृढ़ता के साथ पालन किया है, इसमें कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता। अगर कोई आ रहा है माना हमारी कमजोरी है, हमने प्रतिज्ञा के रूप में इस संकल्प को रिवाइज नहीं किया, याद नहीं रखते। इसलिए हमेशा अपनी लगन को चेक करो, और जिसका बाबा से बहुत प्यार है, बहुत लगन लग गई, विघ्न आएंगे खत्म हो जाएंगे, डोंट केयर, परवाह नहीं करनी। इसलिए कोई भी बात की परवाह न करके एक बाबा के प्यार में खो जाओ, सब रास्ते निकल आएंगे। बंधन बंधन नहीं करो, सेवा में लग जाओ, बंधन अपने आप कट जाएंगे। ये हम लोगों का अनुभव है। ईश्वरीय सेवा के बंधन में बंधी हुई आत्माएं, बंधन है ये भी, लेकिन ईश्वरीय सेवा करते करते वो बंधन तो अपने आप भाग जाते, कट जाते। तो इसलिए कभी भी नहीं कहना मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मुझे ये काम है वो काम है। संगम युग पर भाग्य बनाने का ये गोल्डन चांस है, ये लॉटरी है, जितना आप बनाना चाहो बना लो, आपके हाथ में। इसलिए प्रकृति देवो कितना आनंदित हो गई। लगन के साथ साथ मगन होना सीखो। चौथी बात, मगन। बाबा के प्यार में खोते समाते समाते एकदम समा जाओ। कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, भक्तों ने बात कही है। और बाबा कहता है अगर लीन हो जाएगी तो समाप्त हो जाएगी, लीन नहीं होती, वो तो अविनाशी सत्ता है, वो लीन कैसे होगी। इसलिए बाबा क्या सुनाते हैं कि बच्चे लव में लीन हो, प्यार में लीन हो जाओ, खो जाओ, ऐसे मग्न हो जाओ तो सारी दुनिया की सुध बुध भूल जाए। कभी योग में मग्न अवस्था का अनुभव करते हो? एक है रूह रिहान करना, मनन करना, चिंतन करना, मौज का अनुभव करना, लेकिन एक है एकदम बैठ गए बाबा के प्यार में, खो गए, सब ते भूली, दुनिया भूली, संबंध भूले, सब कुछ भूल गया, इस देह से न्यारे हुए और बाबा के प्यार में समा गए। यह है लवलीन स्थिति। और इस लवलीन स्थिति का अनुभव करो ना तो ये कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती, संस्कार अपने आप चेंज हो जाते, एकदम नेचर सरल हो जाती, सरल नेचर हो जाए, बस इजी नेचर बनाओ, टाइट नहीं, क्योंकि वो टाइट नेचर है और टाइट नेचर वाले हर जगह पर टकराव कर देते हैं और इजी नेचर वाले हर जगह सेट हो जाते, सबके साथ मिलके चलते। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? अपनी नेचर को बड़ा सरल चित बना लो, लेकिन ऐसे सरल नहीं बन जाओ जो माया आपको खींच करके ले जाए, तो उसमें भी ध्यान रखना। सरलता भोलापन नहीं है, मोल्डिंग पावर है, इजी नेचर है। तो हम सब बाबा के बच्चे जितना मग्न स्थिति में रहते हैं, बाबा के स्नेह में खो जाते हैं, प्यार में समा जाते हैं, उतना ही कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं, उपराम हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो संपूर्णता को प्राप्त किया, उनकी दो विशेषताएं रही। एक, सबके बीच में रहते हुए उपराम बन गए, उपराम, कर्म कर रहे हैं, बच्चों से मिलजुल रहे हैं, पत्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को भाषणा देते, मुरली चलाते, मकान दुकान जो भी बन रही थी, जो भी मधुबन बन रहा था पांडव भवन, उसका भी ध्यान रखा। लेकिन सब कुछ करते हुए अंदर का पुरुषार्थ था, मुझे बाबा के साथ संपन्न बन करके जाना है, उड़ना है, संपूर्ण बनना है। और उस एक लक्ष्य के कारण हर बात करते हुए उपराम हो गए, ऊपर की स्थिति में, जैसे यहां है ही नहीं, न्यारे हैं, प्यारे हैं, सबके साथ हैं, लेकिन अलग हैं, खोए खोए हैं, और साथ साथ दृष्टा बन गए। दृष्टा समझते हैं, जैसे कोई नाटक चल रहा होता ना, एक्टर कोई नाटक कर रहा है, खेल हो रहा है, और देखने वाला उसको देख करके वाह वाह करता है, ये नहीं कहता ऐसा क्यों कर रहा है, कहते हैं मान लो अगर कोई गलत पार्ट बजा रहा हो, रावण है सीता का हरण कर रहा हो, राम को गाली दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो क्या कहेंगे, गलत है, कहेंगे वाह क्या अच्छा डायलॉग कर रहा है। साक्षी हो तो उसमें मजा ले सकते हो, अगर इन्वॉल्व हो गए और उसको रियल समझ लिया तो खुद दुखी हो जाओगे, ये बेहद का नाटक चल रहा है। कभी देखते हो ऐसे, हर आत्मा कितना अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रही है, कोई लड़ने झगड़ने का पार्ट बजा रही है, कोई सेवा का अच्छे से अच्छा पार्ट बजा रही है, कोई के संस्कार बड़े दिव्य हैं, अलौकिक हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, और कोई के संस्कार बड़े कठोर हैं, झगड़ालू हैं। हर एक को देख करके दृष्टा स्थिति रहती है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाबा ने सब बच्चों को देखा, कोई कंप्लेन लेके आता था, बाबा भंडारे में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, बाबा दृष्टा, साक्षी दृष्टा, सब भावनाएं रखी, परिवर्तन करने की बहुत अच्छी भावनाएं रही, शिक्षाएं भी दी, क्लास में दी, पर्सनल नहीं दी, सभा में दे दी, जो कहना है कह दिया, मुरलियां सुन रहे हम, वही शिक्षाओं की मुरलियां है ना, जो साकार के समय बातें बाबा के सामने आती थी, बाबा धड़ाधड़ मुरली के अंदर बोल देता था, बदलने समझने वाला समझ जाए, नहीं समझने वाला छोड़ दो। लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति में बाबा ने अपनी एक रस स्थिति बना ली, ध्यान रखना। अब इसकी इस समय अनुसार बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अंतिम समय में हर आत्मा के पिछले रहे हुए हिसाब किताब है। जो भी पिछला खाता उन्होंने किसी के साथ बनाया है वो इस समय उसको चक्तू करना है। विकराल रूप भी आएंगे, न चाहते हुए भी ऐसे ऐसे कईयों को बीमारी आएगी, कईयों का मन डिस्टर्ब हो जाएगा, कईयों की खुशी गायब हो जाएगी और आप बड़े रहम दिल बनते हैं, पता नहीं इनके साथ न्याय नहीं होता, इनको कोई पूछता नहीं है। और कई ऐसे कुमार हमारी बहनों के ऐसी कोई लाइफ देखते हैं और उसको सहयोग देते देखते उसमें फंस जाते हैं। ध्यान रखना, साक्षी दृष्टा बनने की जरूरत है। सो भावना दे सकते हैं, रख सकते हैं, रखें, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। वो जाने, बड़े जाने, उनके कुछ कर्म है, उनका कुछ हिसाब किताब है, वो अपने आप आत्मा उससे निकलेगी, बाबा उसके साथ है, मुझे उसके बीच में नहीं आना है। कभी भी कोई कुमारों को किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अगर मुझे अपनी स्थिति बनानी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी की लाइन में मुझे आना है, तो मुझे बाबा का एक स्लोगन याद रखना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट, अपना चिंतन करो, अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, अपने लिए समय दो, अपने से बातें करो, दूसरा क्या करे, क्या कर रहा है उसमें नहीं जाना। अगर जाओगे तो स्थिति डगमग हो जाएगी, क्यों क्या के प्रश्न आएंगे, उलझन हो जाएगी, खुशी गायब हो जाएगी, फिर ज्ञान योग भूल जाएगा। यहां भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे करते, वो भी ऐसे करते, और बाबा क्या कहता है, तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि हम सबको अपनी एक रस श्रेष्ठ स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए उपराम और साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। देखो सब कुछ, देखने की मना नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि को नहीं खराब करो, हर्षित रहो और जो सहयोग दे सकते हो शुभ भावना का सहयोग दो, योग का सहयोग दो, उसके लिए स्पेशल योग करो, ठीक हो जाए। बाकी कोई की पर्सनल लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है। और दो बातें मैं आपको सुनाता हूं श्रेष्ठ पुरुषार्थी की, एक शब्द याद रखना, दो बातें आ जाएंगी। बाबा एक शब्द देता है अंतर, अंतर शब्द में दो बातें हैं, एक अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करो, अंदर जाओ, अंदर डिप्ट, बाहरी बातों को नहीं देखो, उनके प्रभाव में नहीं आओ, अंदर चले जाओ, अपने आप को देखो। कईयों को अपने को देखने का टाइम ही नहीं है, दूसरों को ही देखने में समय चला जाता है। अकेले में बैठ करके अपने को देखो। दादी जी का एक पुरसार सुनाता हूं। अचानक दादी से एक बार मैंने पूछा, अकेले में बैठते थे, पत्रों के कारण जाना होता था दादी के सामने, तो दादी लास्ट दिनों में 3-4 साल तक बहुत मस्ती में आंख बंद करके रहती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे हाथ हिलाया, मैंने कहा दादी, तो ऐसे कहती क्या, मैं दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं, कहती मैं बताऊं क्या करती हूं, कहा जरूर बताओ, ऐसे हाथ किया ऐसे, कहती मैं अपने इस हथेली पर अपनी इस मणि को ऐसे रखती हूं बुद्धि से, और मैं इसके चारों तरफ नजर घुमा के देखती हूं, कितना अच्छा डायमंड है, कितना वैल्यूबल डायमंड है, आत्मा को देख करके बात करती है, और मैं चारों तरफ से नजर घुमाती हूं, इस डायमंड में कहीं मेरे कोई दाग तो नहीं है, इस डायमंड की कीमत कम तो नहीं हो जाएगी, मुझे बाबा सर्टिफिकेट देता है बच्ची इस डायमंड में कोई दाग नहीं है। ऐसा गहरा पुरुषार्थ, समझ रहे हो, वही कर सकता है जो अंतर्मुखी है, सारा दिन तेरे मेरे में लगा हुआ है, बाही मुक्ता में है, इधर जाना उधर जाना, ये सेवा वो सेवा, सारा दिन ही हमारा टाइम जा रहा है व्यर्थ बातों में, व्यर्थ में इधर उधर समाचारों में, ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, समय नहीं अपने लिए, अंतर्मुखी सदा सुखी। उस समय तो जरूर अपने आप को दो, कम से कम 1 घंटा तो दो, देखो अपने हीरे को कौन कौन से दाग हैं, ईर्ष्या के हैं, नफरत के हैं, लगाव झुकाव के हैं, किसी के प्रभाव के हैं, कोई बंधन है, क्या है अभी तक? बहुत सारी बातें हैं ना, बाल बच्चे तो होते हैं ना माया के, और किसी की कोई कमी है, कमी अंदर आत्मा में है, तो अंतर्मुखी आत्मा उसको महसूस कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। अगर कोई महसूस नहीं कर सकता है तो परिवर्तन हो सकता है? कोई बोलता है, कहता मैं राम थोड़ी हूं, बोलता जाता है, सब दुखी हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं आजू बाजू वाले, और वो समझता है मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूं। कई भाषण करते हैं, क्लास कराते, बोलते जाते सारी सभा उठ के चली जाएगी, उनको बोलना बंद नहीं होता। वो समझते मैं तो बड़ा अच्छी बात सुना रहा हूं, और कोई उसको बंद कराने के लिए तालियां मारता है, वो समझता है सब ताली बजा रहे हैं हमारे भाषण से प्रसन्न होकर के। बोलने की आदत महसूस नहीं कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कमी कमजोरी को महसूस करना, रियलाइज करना, उसकी बहुत जरूरत है। मेरा कोई भी संस्कार पता नहीं चल रहा है, लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, माना मैंने कभी अपने को अंदर जाकर के देखा नहीं है। तो अंदर जाकर के देखना माना अंतर्मुखी, अपने आत्मा रूपी हीरे को देखो, उसकी प्योरिटी की परसेंटेज को देखो, उसकी क्वालिटीज को देखो, उसकी कीमत को देखो, कितनी कीमती है। मैं बाबा का बच्चा बना हूं, भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है, मैं उसका हीरा, उसका चुना हुआ डायमंड, कोई भी प्रकार का दाग इसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तपस्या करो, एकांत में जाओ, अंतर्मुखी बनो, उस दाग को निकाल के छोड़ना है, कितनी कीमत हो जाएगी। ब्राह्मण परिवार आपको सचमुच पूजनीय और गायन योग्य मानेगा इसी समय। कई कहते हैं मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे चांस नहीं देता, कोई सेवा नहीं देता, पता नहीं मेरे में क्या है। उसने कभी अपनी कमी कमजोरी को रियलाइज नहीं किया, अपने संस्कारों को रियलाइज नहीं किया। अगर रियलाइज कर लो तो परिवर्तन हो जाएगा, और सबका सहयोग और साथ मिलेगा, और कई चांस मिल जाएंगे। बाबा देगा चांस, व्यक्ति नहीं देता, छोड़ दो, बाबा अपने आप चांस देगा। तो एक तो अंतर्मुखी बन करके अंदर ही अंदर अपने आप को देखना, अपने आप से बातें करना, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तपस्या करना, कुछ त्याग भी करना, कहीं स्थान का, कहीं मान शान का, कहीं नाम रूप का त्याग करना पड़ता है। बाबा कहता है जो अहंकार शून्य आत्माएं बनती हैं, जरा भी अहंकार होगा ना, मैंपन होगा, मैंने इतना किया, मैं इतना विशेष हूं, मेरे अंदर इतनी अच्छी बुद्धि है, प्लानिंग बुद्धि है, हमारी बुद्धि की इनको पता ही नहीं, कीमत ही नहीं है। अंदर अंदर अभिमान का अंश प्रकट हो जाता है कई बार, और श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं उस अहंकार के मैंपन को जड़ से समाप्त कर देती है, अहंकार शून्य बन जाए। बाबा को जो कराना होगा अपने आप कराए। हमने बाबा को समर्पित कर दिया, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, जो कुछ है सब तेरा है। अब देखो बाबा कैसे यूज करता है, करेगा, लेकिन सच्चे दिल से समर्पण करो, मैं नहीं रखू, मैं। इसलिए ध्यान देना, जो अहंकार शून्य है, निरहंकारी स्थिति में रहते हैं, उनकी बहुत कीमत है इस परिवार के अंदर, बहुत उनको रिस्पेक्ट मिलता है। इसलिए नम्रता का कवच पहन लो, सुरक्षा कवच है ये। जैसे उस दिन बाबा ने ताबीज दिया था ना, याद है? मुरली सुनते होंगे तो याद आएगा, बाबा ने कहा बच्चे ताबीज बांध करके रखना, जैसे कोई किसी के ऊपर ग्रहचारी आती है, कोई बार बार कुछ होता है, किसी की नजर लगती है, तो ताबीज पहना देते। तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे, कोई ग्रहचारी न बैठे, तो ताबीज पहना देता हूं। पहना है सभी ने ताबीज? किसने किसने पहना है? स्थूल ताबीज नहीं पहनना, वो दिखावा वाला, रिस्पेक्ट देने का ताबीज, सबको रिगार्ड देने का ताबीज। कोई कैसा भी है, मुझे रिगार्ड देना है। अगर ये रिकार्ड अच्छा बना लिया कुमारों ने, सचमुच कमाल कर दोगे। कौन सा रिगार्ड? देने का रिकार्ड, और रिगार्ड देने का ताबीज जिसने पहना, वो हाथ उठाओ। सच्ची उठाना है, सबको देना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ा हो। कई लोग थोड़ा अहम में आ जाते हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं डिग्री वाला हूं, मैं इसके अर्थ को जानता हूं, ये जो बहन बैठी ना इसको बिचारी को पता नहीं, मुरली तो सुनाती है, हमको तो चांस मिलेगा नहीं, लेकिन इसको पता ही नहीं है इसका अर्थ क्या है। अरे बाबा ने उसको गद्दी दी है, ये विक्रमादित्य का आसन उसको मिला है, वो जो बोलेगी सत्य है। आप भावना से सुनो, रिस्पेक्ट से सुनो, रिगार्ड दो उसको, और ये रिगार्ड अगर देंगे ना तो बाबा की दिल जीत लेंगे, दिल तख्त के मालिक बन जाएंगे। ये कहते निरहंकारी आत्मा। तो अंतर्मुखी बन करके, नम्रता का कवच पहन करके, निरहंकारी बन करके रहना, ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। और दूसरा अंतर, अंडरलाइन करना अंतर शब्द को, कोई भी संकल्प उठता है, बोल उठता है, कर्म हो रहा है, चेक करो, अंतर करो, भेंट करो। अंतर माना भेंट करना, क्या अंतर है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये करेंगे तो परिणाम क्या होगा, क्या ये श्रीमत कहती है। भेंट करना, अपने संकल्प बोल और कर्म में अंतर करना, राइट और रॉन्ग का अंतर समझना, और समझ करके वही करना जो राइट है। उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो क्या करूं, सोचता तो था। ये जो विवेक है हरेक के साथ काम करता है, संकल्प के साथ, मन की शक्ति के साथ साथ विवेक है, बुद्धि है। और हमेशा कोई भी गलत कर्म मन करने के लिए संकल्प करता है तो बुद्धि उसी समय उसको रोकती है, राइट नहीं, नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत के विपरीत है। लेकिन मन कर्मेंद्रियों के इतना अधीन हो गया है जो बुद्धि को दबा देता है। और बाबा ये कहते हैं जैसे किसी का गला दबाया जाए, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं अगर अपने विवेक को दबा देती हैं तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। ध्यान देना, श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा कभी भी अपने विवेक को सुनेगी, विवेक को दबाएगी नहीं। जो विवेक कह रहा है, जो अंदर से प्रेरणा आ रही है, पहले अपने बुद्धि का विवेक टच करता है और फिर बाबा की टचिंग भी आती है। लेकिन कई अपनी भी बुद्धि के विवेक को सुनते नहीं और बाबा की टचिंग में भी अलबेले हो जाते, उसमें भी मनमत मिक्स कर देते, सोचते हैं पता नहीं, बाबा तो कहता है मैं बच्चों को टच करता हूं, ये टचिंग राइट है या नहीं। अगर टचिंग राइट है तो उसकी निशानी क्या होगी, उलझन नहीं होगी, प्रश्न उठेंगे ही नहीं। और अगर मान लो आपको कोई ऐसा आ भी रहा है, चलो हम योग में बैठे थे, बाबा ने मुझे ऐसे टच किया, लगता है ये राइट है, ये करना चाहिए, लेकिन कहीं से वेरीफाई कराना जरूरी है, कराना चाहिए, नहीं तो कभी कभी अपनी बुद्धि की, मन की मत उसमें मिक्स हो जाती है। इसलिए जो निमित आत्माएं हैं, बाबा तो कहता है बच्चे अगर तुम अव्यक्त स्थिति में रहने के अभ्यासी हो तो अव्यक्त वतन में आकर के मेरे से वेरीफाई करा लो, लेकिन वो अभ्यास चाहिए, बहुत समय से व्यक्त से परे रहने का अभ्यास चाहिए, तब तो हम अव्यक्त से वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा पाते। तो साकार में जो निमित्त है, चलो साकार में निमित्त में आपका फेथ नहीं है, आपके सामने सबसे फेथफुल कौन सा साधन है, मुरली। आपके बाद जो विचारों में आ रहा है, जो टचिंग आ रही है, आपको लगता है बाबा की टचिंग हो सकती है, सचमुच बाबा की मुरली जादू है। आप उठा के देखो, जो आपके अंदर प्रेरणाएं आएंगी बाबा की मुरली में उत्तर होगा। अगर मेल खाता है, वैसे ही विचार बन रहे हैं जैसा बाबा कह रहा है, जरूर करो, वो टचिंग राइट है। तो हम सबका अगर बाबा की मुरली से अच्छा प्यार है, मैंने कई बार देखा है, किसी टॉपिक पर बोलना हो, कोई बात सामने हो, कोई कोई प्रश्न पूछ रहा हो, बाबा उसी दिन की मुरली में मुझे उत्तर देता है और सबको देता है, इतना प्यार चाहिए। मुरली से प्यार ही सिद्ध करता है मुरली धर से प्यार है। कितनी बार मुरली पढ़ते हो, कुमारों को टाइम मिलता है? आजकल तो साधन बड़े अच्छे अच्छे हैं, आपके मोबाइल में भी मुरली, आवाज में भी है, लिखत में भी है, सब साधन इस समय साइंस ने उपलब्ध किए हैं, लेकिन जहां लगन है, प्यार है मुरली से, वहां पर समय निकल आता है। ध्यान दो, मुरली को जरूर कम से कम 2-3 बार पढ़ना ही है, और कुछ बातें उसके हाईलाइट करो। सब बातें याद नहीं रहती, कम से कम वरदान है, स्लोगन है, ऊपर का सार है, धारणा का सार है, इतना तो हम अपने पास नोट कर लें, उस पर मनन करें, चिंतन करें। कभी किसी का फोन आता है, कोई साथी से बात कर रहे हैं, हेलो करके वो बात सुना है, आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, आज मम्मा ने आज इतनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा की मुरलियों में आती हैं, वरदान में आती हैं। अगर हम एक बात भी किसी के आगे वर्णन कर देते हैं तो उसको लगता है मुझे खजाना मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। मेरे पास अभी अभी एक डॉक्टर आया था, आधा घंटा पहले बैठा करके मैंने ऐसे ही बोला, आप सेवाएं तो बहुत प्यार से करते हो, डॉक्टर तो नेक्स्ट गॉड है, भगवान की समान है, किसको सफा दे दो कितनी दुआएं मिल जाती, लेकिन आप सदा एक अनुभव करना कि मेरे सिर पर बाबा का ऐसे हाथ है और वो मुझे हमेशा देख रहा है। अगर सचमुच ये अभ्यास करो, इससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ और का क्या होगा। मैं हमेशा एक अनुभव करता हूं कि बाबा मेरा बैकबोन है। मैं टाइप करता हूं, उंगलियां चलती हैं, सब बाबा अच्छे से अच्छा काम कराता है, क्यों पीछे से देख रहा है, कुछ गलत होने नहीं देगा, और अगर एक बार टाइप हो गया तो उसको कोई करेक्शन नहीं करेगा, तो कराने वाला करा रहा है ना, मैंने थोड़ी किया। श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या हुआ, बुद्धि की लाइन बहुत क्लीन और क्लियर चाहिए, मिक्स नहीं चाहिए। बाबा की टचिंग आएंगी, बाबा की प्रेरणाएं आएंगी, बाबा के इशारे मिलेंगे और आपसे हर कार्य राइट होगा। अब समय है कोई भी दांग कर्म मुझ आत्मा से न हो, कोई भी कर्म इंद्री मुझ आत्मा को धोखा न दे। अंतिम समय कोई भी समय शरीर से आत्मा उड़े तो एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा की याद में, एक बाबा के प्यार में उड़ करके पंछी जाए, कहीं पर भी लटके और अटके नहीं, ये ध्यान रखना, यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति। चलो 3 मिनट के लिए मग्न अवस्था का अनुभव करना।
योग के बाद सभी बैठे रहेंगे, अनाउंसमेंट।
3 मिनट के लिए शरीर से डिटैच होकर अपने लाइट स्वरूप को देखो, आत्मा को देखो, अपने ही दिव्य नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से, मैं इस भ्रकुटि के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, एक बहुत प्योर डायमंड हूं, और बाबा की वो किरणें इस डायमंड को चमका रही हैं, तो ऐसा अनुभव करेंगे हम।